72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचान नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राद रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसद के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। जाने माने उद्योगपति रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पुस्तक लीडिंग फ्रॉम द बैक टू अचीव इम्पॉसिबल की एक प्रति भी भेंट की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।